भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की
परम पूजनीय अक्षर महाराज की मुनि संघ की जय।
भव्य जीवों के आत्म कल्याण के लिए भगवान ने जो तत्व संबंधी प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः हमारे श्रुत ज्ञान के उपयोग को जगाने के लिए बहुत ही कार्यकारी सिद्ध होता है। हम संसार शरीर भोगों से विरक्त होने के भावों को धारण कर सके ऐसी योग्यता हम में आ जाए इसलिए तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश हुआ है। यह उपदेश परम कल्याणकारी समझकर उस उपदेश के ऊपर श्रद्धान करना, उन तत्वों पर श्रद्धान करना, यही जीव का सम्यक दर्शन है। केवल भगवान को मानने से सम्यक दर्शन नहीं होता, भगवान के उपदेशों को मानने से, जानने से, उनका ज्ञान प्राप्त करने से, उनका चिंतन मनन करने से, विवेक पूर्वक उन वचनों को अपने जीवन में स्थान देने पर सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। इसी को इन्हीं शब्दों में उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। भगवान को मानने से या तत्वों को मानने से सम्यक दर्शन नहीं होता, तत्वार्थ तत्व के अर्थों को समझकर और भगवान के गुणों को समझकर, उन गुणों की उपलब्धि की आस्था को जगाकर, तत्व को जानकर और तत्व के अर्थों को जानकर उनके भावों तक पहुंचकर उन भावों पर श्रद्धा जगाने का नाम सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन का घात हमारे ही कर्मों ने कर रखा है। सम्यक दर्शन के घातक कर्म ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? सभी कर्म तो हमारे सम्यक दर्शन का घात नहीं कर सकते। 148 कर्म बताए गए हैं, उन्हीं को मूल प्रकृति के रूप से 8 प्रकार के कर्म कहा गया है। तो हमारे सम्यक दर्शन के घात को क्या सभी कर्म करते हैं? क्या उसमें से कुछ ही कर्म हैं? सम्यक दर्शन का घातक कर्म कितने हैं? मोहनी कर्म है। हाँ, मोहनी कर्म सब कर्मों का राजा है। वह 3 गुणों का घातक, मोक्ष मार्ग का ही घातक है। मोहनी कर्म मोक्ष मार्ग का घात करता है। मार्ग का घात हो जाए, यदि जीव को मार्ग पर आरूढ़ होना नहीं दे तो जीव संसार में ही रहेगा। मोहनी कर्म को मालूम है ये हमारे अंडर में आत्मा कैसे रह सकता है। क्या करता है वो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने ही नहीं देता, वो रोक देता है। उसमें 2 मोहनी कर्म हैं, एक चारित्र मोहनी कर्म और एक दर्शन मोहनी कर्म। ये कर्म हमारे लिए मोक्ष मार्ग पर जाने नहीं देते, आत्मकल्याण करने नहीं देते, तत्व चर्चा करने से भी दूर रखते हैं, आत्मा के निज परिणति को समझने से भी दूर रखते हैं। ऐसे दूर रखकर संसारी जीव को संसारी बना के रखने में वो सफल है। मोहनी कर्म सफल बना हुआ है और आत्मा चेतन होकर के भी उस मोहनी कर्म को न समझता हुआ अपने पुरुषार्थ से वंचित होकर निष्फल रहा है, निष्फल हो रहा है। सारी शक्ति लगानी पड़ेगी किसके प्रति? मोहनी कर्म को जीतने के प्रति। सारी शक्ति सर्वप्रथम किधर लगानी पड़ेगी? दर्शन मोहनी को नाश करने के प्रति या चारित्र मोहनी को नाश करने के प्रति? दर्शन मोहनी को नाश करने के प्रति सर्वप्रथम शक्ति लगानी पड़ेगी। या तो ऐसा करें, दर्शन मोहनी कर्म को भी नाश करने के लिए शक्ति लगाएं और चारित्र मोहनी कर्म को भी नाश करने के लिए शक्ति का प्रयोग करें। कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम बताया है क्या भगवान ने कि पहले तुमको सम्यक दर्शन ही प्राप्त होगा फिर चारित्र प्राप्त होगा? नहीं, दर्शन मोहनी को जीतने से सम्यक दर्शन होगा। अब जिनको चारित्र पर जाना लक्ष्य नहीं है उनके लिए ये है, क्या दर्शन मोहनी को नाश करे और सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। जो संयम नहीं चाहता उनके लिए संयम लेना संभव नहीं, नहीं चाहता ऐसा तो हो नहीं सकता। सम्यक दर्शन भी उन्हीं को होता है जिनको चारित्र चाहिए है, उनको ही सम्यक दर्शन होता है। चारित्र पर की आस्था ही तत्वार्थ का श्रद्धान है, क्योंकि चारित्र संवर और निर्जरा का मूल है। चारित्र है, तप है, ये दोनों संवर और निर्जरा का मूल है। ध्यान में आ रहा है ना? चारित्र और चारित्र जो है संवर और निर्जरा का मूल है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा बताया जा रहा है, तो तत्वार्थ का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है ये बता रहे हैं। तो तत्व कितने हैं? सात हैं। तो आश्रव और संवर तत्व की श्रद्धा हमारी होती है क्या? नहीं, अवश्य होती है। किस काल में? सम्यक दर्शन प्राप्ति के काल में हम संवर तत्व की भी आस्था करते हैं। तो संवर तत्व क्या चारित्र को छोड़कर भिन्न है? वो चारित्र का मूल है। निर्जरा तत्व क्या तप को छोड़कर अलग से है? नहीं है। जहां तप है वहीं निर्जरा है। तपसा निर्जरा च और सगुप्ति समिति धर्माणु प्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही। समिति, गुप्ति, परिचय, चारित्र ये सभी संवर के कारण हैं और तप निर्जरा का कारण है। तो निर्जरा का मूल तप हो गया और संवर का मूल गुप्ति, समिति, परिचय, चारित्र इत्यादि हुआ। तो हम सीधा संवर तत्व पर श्रद्धा न करके संवर तत्व और निर्जरा तत्व पर श्रद्धा न करके चारित्र पर, गुप्ति पर, समिति पर, परिचय पर, तप पर श्रद्धान करते हैं तो क्या सम्यक दर्शन नहीं होगा?
है?
जो संवर का भी मूल है और निर्जरा का भी मूल है वह चारित्र और तप है। तो सीधा हम तप पर ही श्रद्धान करते हैं, संयम पर ही श्रद्धान करते हैं। संयम को हम हेय नहीं समझेंगे, चारित्र को हेय नहीं समझेंगे, चारित्र को उपादेय समझ करके उस पर श्रद्धान करते तो क्या सम्यक दर्शन नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। तो ये चारित्र और तप ये किस आत्मा में पाए जाते हैं? क्या अधर आकाश में पाए जाते हैं? चारित्र और तप ये आत्मा के अधीन होते हैं या किसी अन्य द्रव्य के अधीन होते हैं?
आत्मा के अधीन।
ये चेतन द्रव्य आत्म द्रव्य के अधीन होते हैं। आत्मा ही इनको प्राप्त करता है। तो आत्मा ही प्राप्त करता है और चारित्र तप आदि आत्मा को छोड़कर अलग से रह नहीं सकते, इसलिए उस चारित्रधारी आत्मा पर श्रद्धान करना यही तत्वार्थ का श्रद्धान है। तत्व कहां है? चारित्रवान आत्मा में। और अपनी आत्मा में तो अभी मिथ्या दर्शन है, तो हमें अपनी मिथ्या दर्शन को त्याग करके सम्यक्त्व की ओर बढ़ना है। बढ़ने का प्रयास चल रहा है तो उस वक्त क्या चारित्रधारी आत्मा जो स्वयं संवर तत्व को उपलब्ध होकर उनकी अनुभूति कर रहा है, संवर तत्व की अनुभूति, निर्जरा तत्व की अनुभूति करने में लगा हुआ है, उस आत्मा पर श्रद्धान करना क्या हमारे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण नहीं होगा?
कारण है।
अवश्य होगा। इसलिए सम्यक दर्शन की परिभाषा को दो रूपों में परिभाषित किया है आगम ग्रंथों में। अध्यात्म ग्रंथों में तत्व को प्रधान बना करके सम्यक दर्शन की परिभाषा को बताया है और चरणान योग के ग्रंथों में तथा प्रथमान योग के ग्रंथों में यानी कथा ग्रंथों में आत्मा को प्रधान बना करके, यानी चारित्रवान आत्मा को, गुणवान आत्मा को, रत्नत्रयवान आत्मा को प्रधान बना करके सम्यक दर्शन की परिभाषा दी है। तो आत्मा, जो आत्मा संवर तत्व को और निर्जरा तत्व को उपलब्ध हो चुका है, उसकी अनुभूति कर रहा है, उनके पास संयम और चारित्र रहेगा या नहीं रहेगा?
रहेगा,
अवश्य रहेगा। तो ऐसे सत्पुरुष साधु परमेष्ठी, ऐसे भव्यात्मा जिन्होंने अपने जीवन में संवर और निर्जरा तत्व की अनुभूति करना प्रारंभ किया है, वे पुरुषार्थवादी है। और ऐसे महान आत्मा को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए यही करनी पड़ी कि किसी चारित्रवान आत्मा के ऊपर श्रद्धान किया, क्यों किया? उनके गुणों की उपलब्धि के लिए। उनके पास कौन से गुण हैं? तो संवर तत्व उनका गुण है, संवर निर्जरा तत्व उनका गुण है। और संवर तत्व को गुण इसलिए हम कह रहे हैं, वह गुणों का फल है। किस गुणों का फल है? तप गुण का फल है निर्जरा, और संयम गुण का फल है संवर। संवर इस प्रकार ये संवर और निर्जरा ये संयम और तप का फल है, इसलिए तप को और संयम को हम कभी भी हेय समझ करके चल नहीं सकते मोक्ष मार्ग में, ये विपरीत श्रद्धान होगी। तप भी उपादेय है, चारित्र भी उपादेय है, परिशह भी उपादेय है, ऐसे उपाधेय कहकर उपाधेय भूत तत्वों की श्रद्धा हमारी सम्यक दर्शन है। उपाधेय भूत श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो ये सम्यक दर्शन होते समय आगम ग्रंथों में जो दो प्रकार से सम्यक दर्शन की परिभाषा को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये दो प्रकार का सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? तो कहते हैं चरणान योग और प्रथमान योग ग्रंथों के आधार से निर्जरा तत्वान और संवर तत्वान आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। यानी सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा शास्त्र। सच्चा शास्त्र कैसा होता है? संवर और निर्जरा तत्व का प्रतिपादक शास्त्र। सच्चा शास्त्र और कैसा होता है? ऐसे संवर तत्व को और निर्जरा तत्व को धारण करने वाले महान सत्पुरुषों के चरित्र का वर्णन करने वाला शास्त्र प्रथमान योग, वह भी सच्चा शास्त्र है। ऐसे सच्चे शास्त्रों पर श्रद्धान करने से भी सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। जिन शास्त्रों में ऐसे सत्पुरुषों का, ऐसे मोक्ष मार्गियों का, ऐसे मोक्ष प्राप्त आत्माओं का, ऐसे अरहंत भगवंतों का वर्णन नहीं, ऐसे त्रिसष्टि शलाका पुरुषों का वर्णन नहीं, ऐसे शास्त्र को हम शास्त्र नहीं कह सकते। जिस शास्त्र में केवल परिग्रहधारी आत्माओं का वर्णन हो, अस्त्र शस्त्र वस्त्र परिग्रह, 10 प्रकार के परिग्रह आदि को ग्रहण करने वाली आत्माओं का वर्णन हो, चरित्र चित्रण हो, और उस पर हमने श्रद्धान किया, तो परिग्रहधारी आत्माओं के ऊपर श्रद्धान करने से कभी किसी को सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होती। वीतरागी आत्माओं के ऊपर श्रद्धान करने से ही सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, यह नियम है, निसर्ग नियम है, प्राकृतिक नियम है। इस नियम का अनुसरण जो भव्य जीवात्मा करते हैं, वो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद वह विचार करता है कि मुझे यह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हुआ, मुड़ करके पुनः एक बार वह किन परिणामों से, किन ग्रंथों का स्वाध्याय से, किन आत्माओं के यथार्थ श्रद्धान से प्राप्त हुआ, ऐसा जब पुनः अपने विगत समय का विचार करने लगता है तो पता चलता है कि मैंने ऐसे ऐसे शास्त्र का अध्ययन किया था जिस शास्त्र में वीतराग तत्वों का, वीतरागी आत्माओं का वर्णन था। ऐसे वीतरागी आत्माओं का वर्णन सुनकर के उन वीतरागी आत्मा के, आत्माओं के गुणों का श्रद्धान भी किया और वैसे ही गुणों की उपलब्धि के भाव मेरे अंदर जगे और उनकी प्राप्ति के लिए मैं छटपट आया, विशुद्धि को बढ़ाया और मेरे में ऐसे गुणों का अनुराग उत्पन्न होने से मेरा परिग्रह कम होने लगा, मेरी आसक्ति घटने लगी। परिग्रह के प्रति आसक्ति जैसे ही मेरी घटने लगी, मैंने अपने आप को समझ लिया यह शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये परिग्रह पर पदार्थ चेतना चेतन पदार्थ भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूं और मुझे मेरे सम्यक दर्शन को, मेरे अंदर रहने वाले रत्नत्रय को प्राप्त करना चाहिए और इनसे मुझे शिक्षा मिल रही है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से मुझे सम्यक दर्शन का बोध मिल रहा है, इसलिए मैंने उनके ऊपर श्रद्धान करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ऐसा वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी विगत काल में सम्यक दर्शन के कारणीभूत कारणों का विचार करके खुशी का अनुभव करता है कि इसके माध्यम से मुझे सम्यक दर्शन मिला। उनके सानिध्य में जाकर बैठने मात्र से ही हमारा मोह पलायमान होने लगता है क्योंकि हम अपने भावों से सक्रिय हो जाते हैं, उनका चिंतन करने लगते हैं कि ये आत्मा कैसे और मैं कौन हूं, मैं कैसे हूं, ये क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं। इस प्रकार अपनी तुलना उनके साथ, उनकी तुलना अपने साथ जब करने लगता है तो मुझे भी ऐसा रहना संभव है क्या, ऐसा विचार अवश्य करने लगता है। और ऐसा जो विचार करता है उन्हीं के भीतर स्वयं के सम्यक दर्शन के प्रति, यानी विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्म तत्व के प्रति श्रद्धान जगता है। वो बाहर में कारण बनते हैं और हमारी आत्मा के जो परिणाम हैं वो उपादान कारण, अभ्यंतर कारण बनता है, वो निमित्त कारण बनते हैं और ये अभ्यंतर कारण बनता है, भाव उपादान कारण बनता है। उपादान कारण और निमित्त कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है, यही भगवंत ने समझाया है अपनी वाणी से। उपादान कारण समर्थ उपादान कारण, निमित्त कारण भी समर्थ निमित्त कारण, दोनों जगह समर्थता चाहिए, योग्यता चाहिए, परिपूर्णता चाहिए। परिपूर्ण न हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमारे लिए नहीं हो सकती। तो परिपूर्ण कौन, तो परिपूर्ण अवस्था दोनों तरफ से है। अपने अंतरंग आत्मा के जो परिणाम अर्थात भाव हैं वे भी परिपूर्ण चाहिए और निमित्त भी विशुद्ध हो, निमित्त भी परिपूर्ण हो, अपने आप में दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करने वाला निमित्त हो, तो उन गुणों को देख करके हम अपने भावों को जगाते हैं और उस आत्मा के सामने बैठने से हमको सम्यक दर्शन का लाभ होता है, देशना का भी लाभ होता है और दर्शन का भी लाभ होता है। देशना और दर्शन, दर्शन सर्वप्रथम आवश्यक है, दर्शन के बाद फिर देशना मिलती है, दर्शन के बाद ही आस्था जगती है, देशना के बाद हेयोपादे का ज्ञान जगता है, दर्शन से आस्था जगती है, रुचि जगती है, बैठने की इच्छा होती है, फिर बैठने की इच्छा होती है तो कुछ सुनने की भी इच्छा होती है। वो भव्यात्मा कहता है, हे महान आत्मा महात्मा, मैं बहुत दूर से आया हूं, यात्रा करते करते मैं बहुत पहले से आपका दर्शन लेना चाहता था। ऐसी क्यों जिज्ञासा हुई थी आपके पास? तो रुचि थी। काश किसके प्रति रुचि है? अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगाने के प्रति रुचि है। साधु संतों के पास, महान आत्माओं के पास कौन पहुंचता है? जो ऋषिवान है, अपने आप को बनाना चाहता है, अपने आप की आत्मा को मोक्ष मार्ग पर लगा करके कल्याण करना चाहता है, वही ऋषिवान होता है। इसलिए सारे ग्रंथों में ये कहा है, आत्म तत्व की रुचि के बिना व्यक्ति न परनिमित्त को ग्रहण करता है और न उपादान कारणीभूत, जो कारण अभ्यंतरी कारण है, उस अभ्यंतरी उपादान कारण को जगा सकता है। उपादान सोया हुआ है, जब तक वह सोया हुआ रहता है तब तक वह असमर्थ कारण कहलाता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में असमर्थ कारण, समर्थ कारण नहीं है वो। और उपादान जब जाग जाता है तो रुचि पैदा होती है। जब रुचि पैदा होती है तो वह ढूंढने लगता है निमित्त को। मैं ऐसे महान आत्माओं के सानिध्य में जाऊं, उनका दर्शन भी करूं और उनका उपदेश भी सुनूं। दर्शन और उपदेश को सुनूं, यह जो आशा है वो स्वयं के कल्याण के प्रति आशा है। अपने आप को बनाने के लिए यह आशा जागृत होती है और वह जाता है। महान आत्माओं का जब दर्शन करता है तो आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है और वो कहता है, आप ऐसे कैसे बन गए? आश्चर्य की बात है, आप ऐसे कैसे रहते हैं? अद्भुत बात है, हम भी क्या ऐसे रह सकते हैं? हम भी रहना चाहते हैं, ऐसा कहकर वह उनके प्रति श्रद्धान करने लगता है। उस काल में श्रद्धान करते करते भी, यानी दर्शन के माध्यम से भी, वह सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है और उपदेश सुनते सुनते भी सम्यक दर्शन की भूमिका उसकी बन सकती है। इस प्रकार वह दर्शन और देशना दोनों के माध्यम से आगे बढ़ता है। उस काल में उसके 5 लब्धियां होती हैं ऐसा बताया। 5 लब्धि, लब्धि यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो सामग्री है, आवश्यक जो परिणाम है, आवश्यक जो बातें हैं, उन 5 बातों में पहुंच जाता है। 5 लब्धियां होती हैं। वो लब्धियां हैं क्षायोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये 5 लब्धियां उनको प्राप्त होती है। देशना लब्धि को तृतीय नंबर में रखा है और क्षायोपशम लब्धि को प्रथम नंबर में रखा है और बीच में विशुद्धि लब्धि को रखा है। देखो, इस पर से हमें बहुत कुछ समझना है। पहले नंबर में क्षायोपशम लब्धि रखा है। क्षायोपशम किसका? कर्मों का। किस कर्म का? ज्ञानावरणी कर्म का तो क्षायोपशम चाहिए ही, पर ज्ञानावरणी कर्म के क्षायोपशम के लिए मोहिनी कर्म का क्षायोपशम सर्वप्रथम आवश्यक है। मोहिनी कर्म का क्षायोपशम सर्वप्रथम आवश्यक है। किस मोहिनी कर्म का क्षायोपशम आवश्यक है? दर्शन मोहिनी कर्म का क्षायोपशम आवश्यक है और चारित्र मोहिनी कर्म का भी क्षायोपशम आवश्यक है। अनंतानुबंधी कर्म दर्शन मुनि को, दर्शन गुण को, सम्यक्त गुण को और चारित्र गुण को, दोनों गुणों का सर्वनाश करने वाला है, क्या इसका क्षोभशम नहीं चाहिए सम्यक दर्शन को पाने के लिए और चारित्र को पाने के लिए? क्या इनका क्षोभशम आवश्यक नहीं? आवश्यक है। और दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व प्रकृति में भी क्षयोपशम आवश्यक है। तो ये क्षयोपशम क्या है? तो कहते हैं जीव को सम्यक दर्शन की भूमिका तक पहुंचने के लिए भी, देशना लब्धि तक पहुंचने के लिए भी, और देशना लब्धि से पहले जो विशुद्धि लब्धि होती है उस विशुद्धि को भी पाने के लिए क्षयोपशम की जरूरत है। और यह क्षयोपशम चारित्र मोहनी का और दर्शन मोहनी का क्षयोपशम हो जाए तो क्षयोपशम होने पर विशुद्धि भी हो जाए। विशुद्धि होती ही है। कर्म अगर ढीले पड़ गए, कर्म अगर मंद हो गए तो विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति भी उस भव्यात्मा को हो जाती है। विशुद्धि लब्धि तब तक नहीं होती जब तक जीव के पास क्षोभशम नहीं है। और यही कारण है कि सभी शास्त्रों में यह लिखा है, यह प्रश्न आने पर यही उत्तर दिया है। क्या प्रश्न? कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के लिए जीव की लेशा कौन सी हो और जीव की कषाय परिणति कैसी हो, इन दो प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो उसके लिए उन्होंने कहा लेशा मनुष्य गति में और तिरेंच गति में, दो गति की अपेक्षा से जब तक शुभ लेशा प्रकट नहीं होती, शुभ लेशा प्रकट नहीं होती तब तक वह पहली लब्धि में भी आ नहीं सकता। पहली लब्धि का नाम क्षयोपशम लब्धि, पहली लब्धि में भी नहीं आ सकता। और लेशा को और कषाय को मंद करना यह क्षयोपशम लब्धि के अधीन नहीं है। क्षयोपशम लब्धि कार्य है और हमारा पुरुषार्थ कारण है। जहां जहां शुभ लेशा है, देखो एकाग्र करो मन को थोड़ा, जहां जहां शुभ लेशा है वहां वहां क्षयोपशम है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि क्षयोपशम के बिना भी लेशा शुभ हो सकती है। क्योंकि किसी भव्यात्मा की अनंतानुबंधी कषाय जो प्रथम गुणस्थान में प्रधान रूप से उदय में है, उस उदयभूत अनंतानुबंधी कषाय के काल में जीव उसके मंदोदय में भी रहता है, तीव्रोदय में भी रहता है, मंदोदय में भी रहता है, तीव्रोदय में भी रहता है, मंद तीव्र मंद तीव्र, ऐसा जीवन भर जब कभी भी चलता ही रहता है। हमारे लिए जब मंद कषाय होती है तो मंद कषाय इसलिए होती कि कषाय को तीव्र होने के लिए कोई बाहरी निमित्त नहीं मिला और इसलिए हम शांत हैं, कषाय तीव्र नहीं है। जैसे हमको क्रोध आना चाहिए था लेकिन क्रोध दिलाने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मिला तो हम मंद कषायी हैं, और जब वह व्यक्ति मिल गया तो कषाय तीव्र हो गई। तीव्र हो गई तो हम भी अशांत हो गए और उनको भी अशांत कर दिया। और अनंतानुबंधी उदय के काल में हम ये कहते हैं कि इस व्यक्ति के कारण से ही मुझे क्रोध आया, तो व्यक्ति के कारण से अगर क्रोध आता है तो हर रोज आने पर क्यों क्रोध क्यों नहीं होता? हर रोज सामने आता है, सामने से गुजरता है, उस समय तो क्रोध नहीं हुआ, और किसी एकाध दिन ही क्रोध आया, तो उस दिन क्यों आया? उसके पीछे भी कोई कारण रहता है, कारण के बिना कार्य की सिद्धि तो होती नहीं। तो उस दिन क्रोध क्यों आया, कषाय तीव्र क्यों हो गई? तो इसलिए हो गई कि उस दिन हमारे साथ उन्होंने बहुत ज्यादा छेड़ाकानी की। पैसा कल देऊंगा कहा था, अब वो साल भर बाद देऊंगा कह रहा है, तो हमको गुस्सा आया। तो हमारे व्यवहार उसमें जुड़े हुए हैं उनके साथ, और ये सारे व्यवहार के कारण से भी व्यक्ति के साथ जब हमारा संबंध होता है, सामने आने पर ही क्रोध होता है। वो जब तक ये वचन नहीं कहेगा, आपको आज के दिन देना चाहिए था लेकिन देऊंगा नहीं, मैं साल भर ही देऊंगा, साल भर बाद ही देऊंगा, तो उनको गुस्सा आने लगा। अरे भाई कल के दिन देओगे इसलिए हमने पैसा दिया था, और तुम कहने लगे साल भर बाद देऊंगा, तो अंदर ही अंदर उनकी कषाय तीव्र होती, और उनको अनंतानुबंधी कषाय उनको भी है, उनकी भी कषाय तीव्र होती है, क्योंकि आज क्या देना, साल भर बाद देना, ये लोभ कषाय, ये लोभ कषाय, अनंतानुबंधी लोभ कषाय, और उसका लोभ तीव्र में है और इनका क्रोध तीव्र हो रहा है। इस काल में लेशा अशुभ है या शुभ है?
अशुभ,
अशुभ लेशा है, और इस अशुभ लेशा के काल में क्या सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकेगा जीव?
नहीं,
नहीं। सम्यक दर्शन तो रत्न है, सम्यक दर्शन तो गुण है, और ये तीव्र कषाय दोष है। ये तीव्र कषाय परिणति दोष है, और वो सम्यक दर्शन महान गुण है। ये कषाय तीव्र कषाय भी दोष है और मंद कषाय भी दोष है। कषाय मात्र का यहां अभाव करो कह रहे हैं, क्योंकि ये सर्वघाती है। मंदोदय में भी रहेगा तो सम्यक्तों का सर्वघात होगा, और तीव्रोदय में भी रहेगा तो सम्यक्तों का सर्वघात करके ही रहेगा, ये अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी कषाय के मंदोदय को भी हटाना है और तीव्रोदय को भी हटाना है, लेकिन सम्यक दर्शन की भूमिका के काल में इस कषाय को हम मंद बनाए क्या तीव्रता में रखे? मंद बनाए। तो सभी ग्रंथों में यही चर्चा है, तीव्र कषाय के साथ कभी भी भव्यात्मा को सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बनती, इसको मंद करने को कहा है। और मंद करना ये क्षयोपशम के अधीन नहीं है, क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं, हमारे पुरुषार्थ की आवश्यकता है। हम पुरुषार्थ पूर्वक मुझे कषाय नहीं करना चाहिए, मंद रहना चाहिए, इतना भी विचार कर ले तो कषाय तो वही उदय में रहेगी लेकिन मंद हो सकती है। तीव्रता को मंद बनाना ये हमारे पुरुषार्थ के अधीन है, क्षयोपशम के अधीन नहीं। क्षयोपशम हो जाने पर तो हमारे पास वो प्रथम लब्धि उपलब्ध हो जाती है और सम्यक दर्शन की भूमिका में हम प्रवेश करना शुरू कर देते। सम्यक दर्शन की भूमिका पांच स्टेजों पर है, पांच सीढ़ियां हैं इसकी। प्रथम सीढ़ी का नाम है क्षयोपशम लब्धि, द्वितीय सीढ़ी का नाम है विशुद्धि लब्धि, तृतीय सीढ़ी का नाम है देशना लब्धि। आपको बहुत दया आती है कभी कभी, क्यों आती है? मैं तो मंदकषायी हूं, और मंदकषायी नहीं हूं बल्कि आत्म तत्व के श्रद्धान को करके सम्यक दर्शन को मैं प्राप्त कर चुका हूं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे सम्यक दर्शन मनुष्य पर्याय में उपलब्ध हुआ है। परंतु जब अपनी आंखों से वह बहुत सारे मनुष्यों को ऐसा देखता है कि अज्ञान के कारण से विपरीत मार्ग पर वो भटक रहे हैं, उनको सच्चे देव शास्त्र गुरु का भान भी नहीं, और उनको अपनी आत्मा का भी भान नहीं, अपनी आत्मा की कषाय परिणतियों का भी ज्ञान नहीं, जब ऐसे दुखी जीवों को, कषाय से दुखी, दर्शन मोहिनी के उदय के कारण से दुखी, मिथ्या तो होने के कारण से दुखी, मिथ्या चारित्र के उदय होने से वो दुखी, दुखी जीवों को देख करके जब एक सम्यक दृष्टि आत्मा करुणा से भर जाता है तो कहता है इन भव्य जीवों का कल्याण कैसे हो। ये अपाय विचय धर्म ध्यान है उसका। संसारी दुखी जीवों को देखकर मिथ्या दर्शन ज्ञान, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र ये दुख का कारण है। ये दुख दुख रूप है। आत्मा का वास्तविक दुख क्या है? मिथ्या दर्शन दुख है। आत्मा का वास्तविक दुख क्या है? मिथ्या ज्ञान दुख है। और आत्मा का वास्तविक दुख और क्या है? मिथ्या आचरण, विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण को ही दुख कहा है। इसी को अधर्म कहा है, इसी को दुख कहा है। इस दुख को दूर करने का उपदेश भगवंतों ने दिया। भगवंतों का उपदेश क्यों सुनना, मुनियों का उपदेश क्यों सुनना? इसलिए कि हमारे पास अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र का जो दुख का समुदाय, दुख का सागर चला आ रहा है, उस सागर को सुखा करके सुखमय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सागर को हमें पाना है। यानी सुख के सागर को पाना है और दुख के सागर को सुखाना है। ऐसे दुख के सागर से भरे हुए जीवों को देख करके या क्या यह सम्यक दृष्टि अपने करुणा भाव से नहीं भरेगा अंदर? भगवान जब उपदेश देते हैं मोक्ष मार्ग का तो कल्याण के लिए देते हैं। तो भगवान जब उपदेश देते हैं तो करुणा सागर होकर के उपदेश देते हैं ना? क्यों नहीं बोल रहे? हाँ ना, क्यों नहीं बोल रहे? हाँ बोल रहे हो? हाँ ठीक है, हमको उत्तर सुनाई देने के बाद ही उत्तर दूंगा ना। भगवान करुणा के सागर है या नहीं ये भी मालूम नहीं आपको?
नहीं है,
नहीं है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इनका उत्तर सही है। और जिन्होंने हाँ कहा वो बिल्कुल उत्तर गलत है। भगवान करुणा के सागर नहीं होते। करुणा के सागर आप हो सकते हैं सम्यक दृष्टि, करुणा के सागर एक मुनि महाराज हो सकते हैं, परंतु भगवान को करुणा सागर हम नहीं कह सकते। क्यों, किस कारण से? उनके पास राग भाव नहीं, और करुणा से भरने के लिए आत्मा को हमारे पास प्रशस्त राग चाहिए, मोहिनी कर्म का उदय चाहिए, चारित्र मोहिनी कर्म का, कम से कम संज्वलन मोहिनी कर्म का तो उदय चाहिए। मुनि महाराज जब उपदेश देते हैं दुखी जीवों को देख करके तो वो करुणा से भर जाते हैं। उनके उस करुणा से भरना प्रशस्त राग है और वह अपाय विचय धर्म ध्यान है। और प्रशस्त राग होने के कारण उनके पास कषाय भी है, और कषाय है इसलिए प्रशस्त राग से भरना संभव है। संज्वलन कषाय का उदय है इसलिए उनका कषाय प्रशस्त कषाय है, क्योंकि दुखी जीवों को देखकर पिघल रहे और उस दुख के दूर करने का विचार आ रहे हैं, उपदेश देने के भाव आ रहे हैं। तो उपदेश तो सभी देते ही हैं, उपदेश वो नहीं देते जिनको ये प्रशस्त राग भी नहीं है और प्रशस्त राग से वो करुणा भाव से भरते नहीं है। उनके पास दया नहीं होती। वो मुनि महाराज न दयावान होते हैं और न निर्दयी होते हैं। निर्दयी होना अप्रशस्त कषाय है और दया होना प्रशस्त कषाय है। किसी पर उपकार करने के लिए जब एक मुनि प्रयत्न करेंगे तो उनको अपने शुद्ध भाव को छोड़कर शुभ भाव में आना पड़ता है। शुद्ध भाव में रहते समय वो न निर्दयी होते हैं और न करुणावान होते। और फिर भगवान की बात तो अलग ही है। एक ध्यान में रहने वाले मुनि महाराज, शुद्ध भाव में रहने वाले, शुद्धोपयोग में रहने वाले, अपने अशुद्ध आत्मा की अनुभूति करने वाले मुनि महाराज जब अपने आप में रहते हैं तो उनको हम न करुणावान कह सकते हैं, न दयावान कह सकते हैं, न निर्दयी कह सकते हैं। दया करुणा एकार्थक है, एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं ये। दयावान कहते ही समझना चाहिए कि वो शुभ में है, शुद्ध में नहीं। और शुद्धवान आत्मा, शुद्धात्मा कहते ही वहां पर न तो दया है और न करुणा है, न निर्दयी है, निर्दयी भी नहीं है।
इधर तो दया धर्म का मूल है कहते हैं।
दया धर्म का मूल है, सही है। जब प्रशस्त राग से आप रहेंगे, अप्रशस्त राग वहां नहीं है। अप्रशस्त राग के न होने से दया धर्म, परंतु वहां शुद्ध धर्म न होने से दया धर्म भी अधर्म है। अधर्म का मतलब ऐसा नहीं लेना अप्रशस्त कषाय वाला, हां सावधानी से लेना, जल्दबाजी में नहीं लेना, विवेक से लेना, जल्दबाजी नहीं करना। अधर्म दो प्रकार का है, जो राग से सहित ही होता है। वो एक अशुभ राग और एक शुभ राग। अशुभ राग को तो अधर्म ही कहा है, उसमें धर्म का अंश ही नहीं, परंतु शुभ राग को धर्म की संज्ञा दी और अधर्म की भी संज्ञा दी। किंचित कषाय होने से अधर्म है और वह धर्म का उत्पादक है, उत्पत्ति में कारणीभूत है। कौन सा धर्म? शुद्ध धर्म। शुद्ध धर्म में, धर्म की उत्पत्ति में यह किंचित कषाय वाला धर्म भी कारणीभूत है, इसलिए उसको धर्म कहा है। धर्म का कारण होने से धर्म कहा है। देखो ये दार्शनिक विषय, आध्यात्मिक विषय बहुत अपेक्षाओं से जुड़े रहते। वो अपेक्षाएं अगर मालूम ना हो तो हमारा ज्ञान भटक जाता है, उन्मत्त हो जाता है, और यदि अपेक्षाएं पता चल जाए तो वह अपनी उन्मत्तता को खोकर प्रफुल्लित हो जाता है। अपेक्षाएं बहुत होती हैं, तो शुभ धर्म को अशुभ, शुभ धर्म को अधर्म भी कहा, यही तो अनेकांत है। सर्वथा धर्म नहीं कहा, शुभ धर्म को धर्म भी कहा और अधर्म भी कहा। अधर्म किसकी अपेक्षा से कहा और धर्म किस अपेक्षा से कहा, इसका विचार करना अनेकांत के माध्यम से ही संभव है। और अनेकांत तत्व विद्या, विद्या जिसके पास नहीं होती, वो आत्मा भटक जाएगा, वो अर्थ का अनर्थ कर लेगा। अधर्म कहने से चौंक जाएगा या तो धर्म कहने से प्रफुल्लित हो जाएगा, पर अनेकांत विद्या न होने से अनर्थ हो सकता है। तो अनेकांत तत्व क्या है, किस अपेक्षा से यह वस्तु स्वरूप धर्म रूप भी है और अधर्म रूप भी है, ऐसा विचार करना यह वस्तु स्वरूप है, तो सापेक्षवाद है। व्यवहार में बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, निश्चय में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रहती। व्यवहार में ही सब सारी बातें, बहुत सारी बातें रहती, झंझट जो है वो सब व्यवहार में है। अनेक नयों का झंझट जो है, अनेक अपेक्षाओं का झंझट, अनेक विचारधाराओं का झंझट, ये सब व्यवहार में है। निश्चय में कुछ भी झंझट नहीं। निश्चय क्योंकि शुद्ध होता है ना, और शुद्ध को किस अपेक्षा से अशुद्ध और किस अपेक्षा से शुद्ध, कोई अपेक्षाएं होती ही नहीं वहां। परंतु शुद्ध के शुद्ध धर्म की उत्पत्ति में जो निमित्तभूत धर्म होता है, उस निमित्तभूत धर्म में बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। कभी उसको वो हे भी कहते हैं, कभी उपाधेय भी कहते हैं, कभी धर्म भी कहते हैं, कभी अधर्म भी कहते हैं। अधर्म होने से हे है और धर्म का वह कारण होने से उपाधेय है, शुद्ध धर्म का कारण होने से शुभ धर्म उपाधेय है। और उसी को लेके बैठेंगे तो कहते हैं वह अधर्म है, लेके बैठ नहीं सकते आप, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़े बिना शुद्ध धर्म की उपलब्धि नहीं होती, और शुद्ध धर्म की उपलब्धि हुए बिना आत्मा को आप भगवान नहीं बना सकते। तो तीन बातें हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। धर्म भी तीन प्रकार का हुआ। अशुभ को धर्म की कोटि में रखा नहीं है, इसलिए वो सर्वथा अधर्म है। अशुभ को, अशुभ भावों को धर्म की कोटि में रखा ही नहीं, इसलिए उसको तो सर्वथा सब ओर से, एकांत से भी कहो तो चलेगा, यानी समीचीन एकांत भी एक होता है, सम्यक एकांत भी एक होता है। एकांत जो जो होता है वो मिथ्या ही नहीं होता। हाँ, एकांत भी सम्यक भी होता है और मिथ्या भी होता है। तो अशुभ मोक्ष का कारण है, ये अशुभ धर्म है ये कहना मिथ्या है। परंतु अशुभ को एकांत से अधर्म ही कहना, ये सम्यक एकांत है, और सम्यक एकांत से कोई हानि नहीं होती, मिथ्या एकांत से हानि होती है। जैसे इसके ऊपर वाला धर्म ले लें, शुभ को, शुभ को एकांत से अधर्म ही कहा तो ये मिथ्या एकांत हो गया, क्योंकि शुभ अधर्म तो था लेकिन एकांत से आपने अधर्म कहा तो ज्ञान से भटक गए। ज्ञान, अनेकांत धर्म को ज्ञान ने स्वीकार नहीं किया तो भटक गए, तो पहला गुणस्थान हो गया, भटकने से पहला गुणस्थान। और अनेकांत अपेक्षा को समझ करके अगर हमारा ज्ञान दोनों अपेक्षाओं को ग्रहण कर लेता है और उसको सापेक्ष ग्रहण कर लेता है तो वह सम्यक ज्ञान के रूप में रूपांतरित होता है, तब उसको सम्यक दर्शन का लाभ भी हो जाता है। तो कैसा, शुभ धर्म भी है, शुभ अधर्म भी है। यदि हम शुभ को सर्वथा हे ही मान लेते हैं, अधर्म ही मान लेते हैं, तो हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है क्या सम्यक ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है। उसको सर्वथा अधर्म तो नहीं कहेंगे हम, कथनचित अधर्म भी है और कथनचित धर्म भी है, और सापेक्ष रूप है। अधर्म किस अपेक्षा से है? शुद्ध की अपेक्षा से अधर्म है, और अशुद्ध, अशुभ की अपेक्षा से शुभ धर्म है। तो नीचे की अपेक्षा से ऊपर वाला धर्म है, ऊपर वाले की अपेक्षा से नीचे वाला अधर्म है। तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। पर इसको स्वीकार करने के लिए ये नीचे वाला, नीचे वाले को पूर्णतः त्यागना पड़ेगा। अशुभ को पूर्णतः त्यागना पड़ेगा। ये सही है कि गलत है? क्या इसको भी थोड़ा थोड़ा बचाते हुए भी धर्म प्रकट होगा, व्यवहार धर्म नहीं होगा? तो जब तक हमारे पास 10 परिग्रह रहते बाह्य, उनके प्रति रागादि भाव का होना ये नियम है, निसर्ग नियम है। यदि बाह्य परिग्रह है तो अभ्यंतर परिग्रह रहता ही है, ये एकांत है, सम्यक एकांत है। हाँ, यदि बहिरंग परिग्रह है तो अभ्यंतर परिग्रह रहता ही है, ये सम्यक एकांत है। और यदि अभ्यंतर परिग्रह है तो बहिरंग परिग्रह रहता ही है, ऐसा एकांत नहीं है। देखो, ऐसा एकांत क्यों नहीं? जहां अपनी आशा इच्छा अंतरंग परिग्रह है वहां वस्तु होती ही है, ऐसा नियम है क्या? नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इच्छित वस्तु हमें मिलती नहीं और आशा को लेकर के हम भटकते रहते हैं, आशा को लेकर के ही जाते रहते हैं, वस्तु की आशा है लेकिन वस्तु मिल नहीं रही। परंतु वस्तु जिसको मिल चुकी है उनके पास बाह्य वस्तु भी है और अभ्यंतर आशा भी है, तो दोनों प्रकार के परिग्रह, बाह्य वस्तु भी है और अंतरंग, बाह्य वस्तु होगी तो अंतरंग कषाय होने पर ही बाह्य वस्तु होती है, इसका संबंध जुड़ा हुआ है। यानी जहां जहां बाह्य परिग्रह है वहां वहां अंतरंग परिग्रह नियम से है, ये दोनों का अविनाभाव संबंध है। जहां जहां न्याय लगा दो, यहां न्याय ग्रंथ भी आगम ग्रंथ है, अगर कोई बात न्याय से बिल्कुल फिट बैठ रही है तो उसको आगम कहा जाता है। कोई भी विषय मान के चलो कि भगवान ने उसका उपदेश नहीं दिया था और वो सूत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है और वो विषय भी हमको उपलब्ध नहीं है, लेकिन बात ऐसी है, प्रश्न आया है कि ये बात कैसी सच है, ये हमको समझना है, तो वहां पर न्याय प्रवृत्त होता है। न्याय, न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में न्याय के ग्रंथ होते हैं, न्यायालय में न्याय के ग्रंथ होते हैं, न्याय के ग्रंथों से किसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए अनेक अपेक्षाओं से उस बात की चर्चा की जाती है, उसको न्याय की कसौटी पर चढ़ा करके जब बात की परीक्षा होती है तो वस्तु खरा है या झूठा है सिद्ध होता है। अगर खरा सिद्ध हो गया तो उसको आगम ही समझना, भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके उपदेश के वचन तो तत्संबंधी सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई आधार नहीं था, वचन नहीं थे और फिर भी हम इसको स्वीकार करने जा रहे हैं, आपके वचन के बिना स्वीकार करने जा रहे हैं, कहीं किसी ग्रंथ में भी ये विषय नहीं आया है और फिर भी उस विषय को हम स्वीकार करने जा रहे हैं, तो गलत होगा क्या, सही होगा भगवान? तो भगवान कहते हैं न्याय की कसौटी पर चढ़ाए, चढ़ा करके देखा क्या नहीं, तो भगवान देखा है तो वो सही लग रहा है क्या नहीं, भगवान सही लग रहा है तो फिर वो हमारा ही वचन समझ करके ग्रहण कर लेना, इसका मतलब जहां पर हमारे लिए आगम सूत्रों का उपलब्धि, सूत्रों की उपलब्धि नहीं होती है और ऐसे तत्व के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं तो हमारे लिए भगवान ने एक न्याय की कसौटी भी दी है, उस न्याय की कसौटी पर किसी भी विषय को चढ़ा करके ये सोना खरा है या खोटा है हम परीक्षा करके ग्रहण कर सकते हैं। तो कैसे न्याय की, न्याय न्याय को दिया उन्होंने, तो ये अनेकांत सिद्धांत ही न्याय का सिद्धांत है, अनेकांत सिद्धांत ही न्याय का सिद्धांत है। इन सिद्धांत में छद्मस्थ जीव जो श्रुतज्ञानी है वो उसके भीतर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, अनेक प्रकार के तरंगे उठते हैं और कोई भी बात को समझ नहीं पाता, ये सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा हो जाता है उसको। जब वो सही गलत में निर्णय नहीं ले पाता तो न्याय की शरण में आता है, अनेकांत की शरण में आता है, और अनेकांत के शरण में आकर के अनेक नयों को लागू करके जब उस वस्तु के बारे में जो हमारे इष्ट अभिष्ट वस्तु है, विषय है, उस विषय को अनेक नयों के आधार से, अनेक अपेक्षाओं के आधार से जब विचार करना शुरू कर देता है तो वहां पर वस्तु स्वरूप क्लियर होता 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 जाता है। यानी व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, व्यवहार की अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा, ऊपर की अपेक्षा, नीचे की अपेक्षा, बीच वाला क्या है, अनेक ढंग से, अनेक तरीकों से, अनेक विधि विधानों से वह विचार करना, उस विषय पर जब सोचने लगता है तो वह ऐसा कहलाता है कि जैसे एक व्यक्ति नवनीत पाने के लिए दही को मंथन करता है, पानी डालता है, मंथन करना शुरू कर देता है, तो उसको मंथन करने के लिए हाथ से भी कर सकता है और रस्सी भी लगा सकता है, रस्सी भी लगा सकता है और हाथ से भी कर, रस्सी लगाएगा तो यह दो घुमाएगा और पकड़ करके ऐसा ऐसा करेगा, क्योंकि वह रस्सी उस रई से घूम करके उसको घट पकड़ लेती है और फिर खींचने में आसानी होती है। तो हम क्या करते हैं, श्रुत ज्ञान रूपी रस्सी से, उन श्रुत ज्ञान रूपी रस्सी से अपने विचारों को वहां घड़े में डालकर, वो सभी दही के समान है अपने विचार, उसमें नवनीत है या नहीं ये देखना है। हम जो विचार, हमारे जो विचार हैं वो सही हैं क्या, खोटे हैं कि क्या हैं, अगर नवनीत निकल आया तो सही है, नहीं आया तो छोड़ना ही है कि बेकार दही है ये, तो उसको तो ग्रहण करना ही नहीं है। तो उस दही को जब हम मंथन करते हैं तो हमारे दो हाथों में दो रस्सी होती है, या केवल दो हाथ होते हैं, और वो जो रई है हमारे हाथ में होती है। ये है, ये रई जो है ये अनेकांत विद्या है, और जो हाथ में जो दो रस्सी पकड़े हैं उस अनेकांत विद्या के दो नए हैं, एक व्यवहार और एक निश्चय। उस नए के माध्यम से उस अनेकांत विद्या को उसमें लगा करके, अपने विचारों में लगा करके, वो दही है विचार लगा करके मंथन करना शुरू करते। जब भर भर आवाज आती है तो आवाज तब तक आती है जब तक नवनीत न आ जाए, और नवनीत आने के बाद जो आवाज आ रही है वो भी बंद हो जाती है, निशब्द हो जाता है घड़ा, शब्द आना बंद होता है, और फिर झांक करके देखते हैं, अरे ये तो नवनीत बहुत निकला इसमें, तो इसका मतलब मेरे जो विचार थे उसमें सत्य भी था और असत्य भी था, अब असत्य अलग हो गया और सत्य सत्य बाहर आ गया, सत्य सत्य बाहर आ गया। अब इस सत्य को मैं और थोड़ा तपा लूंगा और थोड़ा रिफाइन कर लूंगा, तो इसी तपाने के माध्यम से मैं अरहंत भगवान बनूंगा। जब नवनीत को तपाता है तो सफेदपना गायब हो जाता है और वो पीला पीला घी, देशी गाय का घी, देशी गाय का घी उसके ऊपर आया और वह अरहंत अवस्था हमको उपलब्ध हो गई। सुगंधित है वह घी, सत्य सुगंधित होता है, पर सत्य को, सत्य जब असत्य में छिपा रहता है उसको हम मंथन करते हैं, ये विचारों का मंथन है। इन विचारों का मंथन करते समय तो आवाज आती है, जब मंथन बंद हो जाता है, जब नवनीत आ जाता है ऊपर तो मंथन बंद होता ही है, मंथन जब बंद हो जाता है तो चारों ओर निशब्द सत्यता छा जाती है, सत्य शांत होता है, असत्य अशांत होता है। जब तक हमारे मन के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता और हम छटपटाते रहते हैं, अशांत हैं। अगर उत्तर मिल गया तो क्या मिलता है, उसमें से शांति मिलती है तो हम शांत होते हैं। अब कहीं नहीं जाना है, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, थक गए हम विचार करते करते, आज के दिन उसका उत्तर मिल गया। ऐसा सत्य विषय जब मिलता है तो आनंद होता है, शांति मिलती है। ये शांति कहां मिली? ज्ञान में। अशांति कहां थी? ज्ञान में। शांति अशांति ये दोनों आत्मा की ही परिणतियां हैं, आत्मा की पर्याय हैं। अशांति अशुद्ध पर्याय है और शांति शुद्ध पर्याय है। जहां शांति है वहां सत्य है, जहां सत्य है वहां भगवान है, जहां सत्य है वहां गुरु है, जहां सत्य है वहां सम्यक ज्ञान है, जहां सत्य है वहां आनंद है, जहां सत्य है वहां सुगंधी है। ऐसे सुगंध को पाने का अर्थ होता है केवली भगवान की वाणी, वाणी जो न्याय रूप है, अनेकांत सिद्धांत रूप है, उसका उपयोग अपने विचारों में करना, अनेकांत ढंग से ही हर वस्तु को सोचना, ये हमारा आद्य कर्तव्य होता है। अनेकांत ढंग से सोचना आद्य कर्तव्य। और अनेकांत मालूम ही नहीं है तो न्याय मालूम नहीं है, न्याय मालूम नहीं है तो फिर अन्याय मालूम है। तो अन्याय जब तक मालूम है, अन्याय से ही आप मंथन करना चाहेंगे और उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। तो अन्याय अन्याय वाले ज्ञान को अलग करना है। अन्याय अन्याय यानी असत्य, अन्याय यानी असत्य, असत्य असत्य ज्ञान को अलग करना, असत्य असत्य श्रद्धा को अलग करना, असत्य असत्य आचरण को अलग करना, अलग करके जो पाना होता है उसका नाम धर्म है, उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम सद्गुरु है, उसी का नाम आयतन है, उसी का नाम सब कुछ है। जो कुछ अच्छा ही है सम्यक ज्ञान में है, सत्य में है, और जो कुछ बुराई है वह अज्ञान में है और असत्य में। जहां जहां अज्ञान है वहां वहां असत्य है, और जहां जहां असत्य है वहां वहां अज्ञान है। जहां जहां ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वहां वहां सत्य है, और जहां जहां सत्य है वहां वहां सम्यक ज्ञान है। ये व्याप्ति है, इसी व्याप्ति को, अव्याप्ति को, असंभव आदि को सोच विचार करके अपने ज्ञान को मंथन करने के लिए हमारे सूत्र कम पड़ गए। तो आप इस अनेकांत विद्या को प्रयोग करते हुए किसी भी विषय का चिंतन मनन आप कर सकते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने अनेकांत रूप न्याय सिद्धांत को भी हमारे लिए दिया है। न्याय से वस्तु खरी है या खोटी है इसका परिज्ञान होता है, न्याय की कसौटी पर कसने से। और न्याय की कसौटी पर कसने वालों का दिमाग बहुत तेज चाहिए, तेज चाहिए, चिंतनशील चाहिए और तेज चाहिए। तेज है और चिंतन नहीं करेगा तो वो तेज किसी काम का नहीं। दिमाग तेज है लेकिन वो चिंतन ही नहीं करना चाहता है तो सत्य की खोज नहीं कर पाएगा, और सत्य की खोज नहीं कर पाएगा तो अज्ञान में रहना पड़ेगा, अज्ञान में रहना पड़ेगा तो असत्य में रहना पड़ेगा, असत्य में रहना पड़ेगा तो दुखी रहना पड़ेगा, दुखी रहना पड़ेगा तो अशांति में रहना पड़ेगा, अशांति में रहना पड़ेगा तो अशांति ही अशांति ही, तो अनादिकाल से है। फिर हम चतुर्गति में भटकते रहेंगे। जीव यह अपने अज्ञान के कारण से ही चतुर्गति में भटक रहा है। 14 राजउतंग नवलोक पुरुष संतान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान, बिन ज्ञान, बिन ज्ञान भरमत है। अज्ञान के कारण से और सम्यक ज्ञान का लाभ न होने के कारण से यह जीवात्मा अनादिकाल से भटक रहा है, ऐसे भटकते भटकते अनंत काल हुआ है। इसलिए मिथ्या ज्ञान में अटकना नहीं, मिथ्या ज्ञान में भटकना नहीं, किंतु अपने तेज बुद्धि को सक्रिय करके उसको न्याय की कसौटी पर कसने के लिए जब हम प्रयत्न करेंगे तो हमारा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान बनता है, वही नवनीत है। उस नवनीत से सत्य की उत्पत्ति होती है और सत्य ही परमात्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम।
परम पूज्य नियम सागर महाराज की जय।